कतई ये अर्थ नहीं है। अब उसी का अर्थ समझ करके और ठीक शब्दों का अर्थ लेकर के और उसका यथार्थ अर्थ बतला दे अंदाजी से। जैसे हम लोग का संस्कृत पढ़े नहीं तो हम लोग दूसरे दूसरे बंगला शास्त्र बंगला में जो अनुवाद है ये सब पढ़ करके हम उसका प्रकृत शब्दों का अर्थ रूढ़ी और व्युत्पत्ति इत्यादि तो जानते नहीं, शब्द धातु रूप ये सब तो जानते नहीं, प्रत्यय जानते नहीं, समास जानते नहीं, तो एक तरह से अंदाजा करके अर्थ लगा लेते ऐसे वो समझ जाते और उसी के द्वारा उनको परास्त करके हरा देते। एक बार ये गए बाग बाजार में, सबसे बड़ा एक धनी आदमी था, बहुत बड़ा भाई उसके घर, तो उनके घर से जब उन्होंने कुछ भिक्षा मांगा, वो वहां पर क्या कहते हैं, कैसे बुलाते हैं बंगाल में, यहाँ तो हरि बोल या राधे 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 कहते थे, हरे कृष्ण या कुछ बोल, हाँ तो जैसे वो दरवाजा खटखटाया या कुछ हुआ तो माँ बाड़ी ते के अच्छे तो उन्होंने आवाज दिया, एक महिला आई देख करके कहे आप लोग ठहरिए, तू डरा और घर में चली गई और अपने पति के पास में, अरे बाबू ऐसे छे मानी जमींदार बाबू, जमींदार बाबू ऐसे छे, बस वो वहाँ पर लेट रहे थे सुनते ही नाम और झट निकल करके आए, आ करके उस बच्चे को छोटा सा वो पहचान लिया और उनके चरणों में गिर गए। मुकुंद बाबा जी ये क्या हो रहा, ये भी ये तुम ही आपने की पिनार बाबा नाम दिए तार छे लेना है सब विनोद बस ले जा करके घर में बड़ा आदर जत्न किया। फिर उन्होंने हरि कथा सुनाई, बहुत देर तक सुनते रहे, फिर बीच बीच में बुलाया ये गए, अंत में जिसे ताले अमी की दुबो अपना के, तब इन्होंने उनसे कुछ कहा होगा जब कलकत्ते के बाग बाजार में हम लोग मठ बनाए, तो उस समय में
तो बाग बाजार प्रसिद्ध छिलो ना कि
नहीं, वहां नहीं उल्टा, तो उस समय में उन्होंने कहा जमीन जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, तो जमीन का है कितना लाख रुपया, उस समय बहुत मूल्य, एक रुपये में तो एक परिवार का भोजन सब पूरा खाना पीना सब कुछ हो जाता था, तो उन्होंने दे दिया जमीन का दाम, जमीन हो गया। अब इन्होंने ये व्यवस्था किया जैसे कहीं किसी से लेकर के तब फिर मंदिर बनाएंगे, तो उनसे कहा जैसे आपने तो जमीन दिया तो हम लोग अब दूसरे से भिक्षा मांग करके वहां पर मंदिर बनाना चाहिए, उनका ये थाली दिया हमने और भात कोई दूसरा देगा, हमने थाली दिया है तो भात भी देंगे। तो उन्होंने मंदिर विशाल मंदिर बहुत सुंदर, हाँ वही वही तो इनका वो तो ये उनकी प्रजा थे, गुरु महाराज जी के प्रजा, पीछे से कुछ और लोग जाने लगे, उन्होंने कहा जे हमने किया, किंतु गुरु महाराज जी ने उस बाग बाजार मठ को उनसे बनवाया। गुरु महाराज अपने मुख से ये सब बातें बतलाते थे हमें, विशेष करके मैं उनसे ये सब बातें खूब घुल मिल करके मैं उनसे पूछता था, यहाँ तक उनसे बहुत तर्क भी करता था, बहुत प्रसन्न होते थे। ये गुरुजी जब सब छोड़ छाड़ करके मायापुर, वहां मायापुर में कैसी सेवा की, पहले वहां मुसलमानों का कब्रगाह था, यहां भी चैतन्य मठ हम देख रहे हैं जहां प्रभुपाद की समाधि है, कुछ हद तक मुसलमानों का कब्रगाह किया था। ये बड़े तेजस्वी थे, मुसलमान लोग कहते थे इन लोगों को, इन ब्रह्मचारियों को देख करके, ओ सरस्वती ठाकुर की मंत्र जाने, ये माथा इधर के गोल कर दिए, की करे, इनके सिर पर कटहल तोड़ करके खाता है, इनको बेवकूफ बना दिया है सब, पढ़े लिखे लड़के सब बेवकूफ बन करके, कोई बर्तन मांजता है और कोई कुछ करता है, कोई सिर पर क्या क्या लाता है, ये सब सुना, ये मूर्खों को भेड़ा बना दिया है। ऐसे वो कत्तिकारी इनको मारते थे। तब प्रभुपाद जी ने जब इनको वहां की जमींदारी का रक्षाकर्ता बना दिया, इसको इनके हाथ में दे दिया, वो 10 वर्षों तक खजाना नहीं देते थे, दया करके कोई भी कुछ दे दिया। अब जब इनको बना दिया तो ये तो जमींदारी सब जानते थे, एक दिन के अंदर में सबको बुलाया, आज नहीं देने से कल का समय देते हैं, यदि कल सब रुपया नहीं जमा कर दोगे तो हम देखेंगे। दूसरे दिन लोगों ने नहीं दिया तो उनमें जो सबसे बालिक था मुसलमान का, बड़ा लंबा चौड़ा और जवान, उसको पकड़ करके खाट के नीचे घुसा दिया और कहा जे दो बेत मारो इसे, बस अपने चपरासी से दो बेत मारा और कहा जे तब तक रखो जब तक इसके घर वाले पैसे नहीं लाते। बस थोड़ी देर के बाद में जितना खजाना था 2 दिन के अंदर में सब 1000 रुपये उसके आ गए, प्रभुपाद को दे दिया। प्रभुपाद ने सुनी अद्भुत, तो छोटे छोटे 15-16 वर्ष के लड़के, 18 वर्ष के, और जमींदारी को कंट्रोल कर दिया। तब वो ऐसा दिल्लगी नहीं करते थे, तब वो सब जब्त हो गए। तो वो कब्रगाह जो थे, इन्होंने एक दिन उसको ईंट से घिरवाया, दीवाल लगाई, कहे बाबू ईंट क्यों लगाते ने, कहने दीवाल क्यों करा रहे, कहीं जैसे यहाँ पर तुम लोगों का अलग से यह रहेगा और उन लोगों का अलग रहेगा, इसलिए हम प्राचीर दिलवा रहे हैं।
अच्छा,
और रात में सबको फेंक फाँक करके और नए नए बड़े बड़े आम के, कटहल के और सब बड़े बड़े फूल टूल पेड़ पौधे सब लगा करके भर दिया पूरा। दूसरे दिन आकर के देखा जाए यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो वो जा करके बलवा और विद्रोह करने पर आतुर हो गए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस इत्यादि सबको बुला करके ले आए, थाने में रिपोर्ट कर दी। इन लोगों ने वो सब आए इंक्वायरी में तो कहा जैसे इतने इतने बड़े पेड़ की एक दिन में होते हैं, ये तो बरसों से हम लोगों की है और इसमें फूल कटहल और आम और ये सब लगा हुआ है, आप ही लोग विचार कीजिए। तो वो सब लोगों ने रिपोर्ट दे दिया, ऐसे झूठ बात है, ये तो सब बगीचा है यहाँ का और मंदिर पास में है, बस इन लोगों का एक दिन में दखल कर दिया और मायापुर अब दूसरे रूप में हो गया। इसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि और भजन स्थल, पहले इनके बड़े भाई नाम क्या था, ललिता बाबू या क्या, ललिता बाबू,
ललिता प्रसाद छोटू,
उनके दखल में था, वो यहाँ पर रहते थे बहुत दिनों से भक्ति विनोद ठाकुर के अपरक्त होने के बाद। प्रभुपाद ने कहा जैसे कोई ऐसा है जो उसको दखल में ले ले, तो गुरु महाराज ने कहा यदि आपका आदेश हो तो मैं 1 मिनट के अंदर में उसको ले लूंगा, जैसे ठीक है तो तुम ले लो। तो वहां से बहुत से आदमियों को ले गए, बड़ी बड़ी लठिया हाथ में दे दी और जाकर के ललिता बाबू से कहा जैसे आज विनोद 1000 गुंडों को लेकर के आ रहा है, आज आपका प्राण नहीं बचेगा, यदि अच्छा चाहते हैं तो आप छोड़ करके चले जाइए, नहीं तो ये मारपीट करके सब दखल कर दें। तो वो अपने आप वहां से हट गए और फिर उसको दखल कर दिया। प्रभुपाद जी आकर के फिर वहां पर विग्रह प्रतिष्ठा किया, भक्ति विनोद ठाकुर का वहीं पर भजन करते थे, उनका प्रधान एक मठ बन गया। इससे जहां जब जो जो चीज की जरूरत पड़ती थी वहां पर वैसी वो सेवा करते थे। दैनिक नदिया प्रकाश में उस समय एक प्रबंध लिखा, उसका नाम रखा वैष्णव विजय, उसमें मायावाद का खंडन किया और भक्ति की स्थापना की, वो ग्रंथ अब बंगला में उपलब्ध है,
मायावाद जीवनी,
मायावाद नीति, उसमें उन्होंने दिखलाया आज तक जितने मायावादी हुए हैं वो सब असुर हैं। रावण पहला और पक्का मायावादी था। मायावादी क्यों? वो पक्का था, शक्ति को चुराया, सीता जी को चुराया। माने क्या? रामचंद्र शक्तिमान है और उनको शक्ति को उसमें से निकाल लो तो वस्तु निशक्तिक हो गई, निराकार निरंजन, यही है अद्वैत बात। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य भक्तों के द्वारा रावण की लंका को खत्म कर और सीता जी को लौटा लिए, अर्थात तो शक्ति शक्तिमान दोनों अभिन्न है, इसमें ये प्रमाणित किया, दिखलाया कि आज तक तो कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन करने वाला अद्वैत बाद में नहीं गया, जो नहीं जानते हैं वही अद्वैत बाद में गए, किंतु वैष्णव धर्म में प्रवेश करके कोई भी व्यक्ति आज तक अद्वैतवाद में नहीं प्रवेश किया। किंतु जितने भी बड़े बड़े अद्वैतवादी हैं अंत में वैष्णव धर्म में आए हैं और इसका सब ब्यौरा उन्होंने दिया। सुखदेव गोस्वामी अद्वैतवादी थे, ब्रह्मवादी थे, व्यास जी ने उनको घुमा फिरा करके वैष्णव धर्म में ले आए, ये भागवत के वक्ता हैं। राजा जनक थे वो ब्रह्मवादी थे, सनक सनंदन सनातन ये ब्रह्मवादी थे, इन सबको वैष्णव ने बड़ी चलाकी चतुराई के साथ में इधर में लाया, किंतु कोई भी वैष्णव आज तक कभी भी मायावाद में नहीं प्रवेश किया, क्योंकि वो जानता है कि ये ठीक नहीं, वो समझ जाता है। इस तरह से उसमें नंबर बार युग के अनुसार में समस्त युगों की बातें उसमें लिख करके उसा, वो यदि कोई बड़ा विद्वान पढ़ता है तो वो विस्मित हो जाता है, जी कहां से इतनी युक्ति उन्होंने दी। नतीजे बुद्ध देव 18 बुद्ध हैं और ये जो शक्र सिंह थे 18वां बुद्ध थे, एक ही बुद्ध नहीं है, 18 बुद्ध हैं, जिन बुद्ध और क्या क्या बुद्ध, भगवत बुद्ध पहले हैं, भगवत बुद्ध और ये जो जहां पर उनकी सिद्धि गया में जिनकी हुई थी वो एक नहीं है। भगवत बुद्ध के यहाँ उनके जन्म स्थान में वो बुद्ध बने थे शाक्य सिंह, इसलिए साक्षंग बुद्ध भगवत बुद्ध नहीं है। बहुत से बुद्ध बड़े बड़े विद्वान लोग समझते हैं कि एक ही बुद्ध हुए, ये जो बुद्ध हुए जो वेद को नहीं माना ये दूसरे बुद्ध हैं और भागवत वाले जो हैं वो दूसरे हैं। इस तरह से उस ग्रंथ में लिखा, एक उन्होंने अब एक लिखा है और अचिंत भेदाभेद बात त्रिशूल, उस ग्रंथ को मैं छपाना चाहता हूं, उसमें स्वकीय बात परकीय बात इत्यादि का गवेषणात्मक उसमें उन्होंने लिखा है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं परकीय बात नहीं है स्वकीय बात, विशेष करके बहुत से इधर उधर वाले बाबा जी लोग, उसमें गुरु महाराज ने युक्ति के द्वारा प्रमाण के द्वारा उसमें साबित किया है कि हमारे समस्त आचार्य रूप गोस्वामी से लेकर के जीव गोस्वामी से लेकर के और भक्ति विनोद ठाकुर तो समस्त जितने आचार्य हैं सब स्वकीय बात के पोषक हैं, किंतु अनाधिकारियों के लिए स्वकीय बात की शिक्षा दी गई है, जीव गोस्वामी ने ऐसा किया। स्वलिखितम किंचित परीक्षा, परीक्षा मैंने संप्रदाय के अनुरोध से कुछ लोगों अयोग्य शिष्यों के लिए उन्होंने स्वकीय बात कर दी और पार्थिय बात का पुष्टि किया है, अपने अपना जो विचार है उसके रूप में किया है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत से ग्रंथ प्रकाश किए, उन्होंने उनकी साहित्य जब हम देखते हैं गुरु जी का तो जाने कब पढ़ते थे कब लिखते थे, हम तो उनकी 50 वर्ष की उम्र से थे, करीब करीब 1946 में मैं आ गया, उस समय करीब करीब उनकी 50 वर्ष की उम्र, उनके साथ में काफी दिन रहा 1968 तक। बाण महाराज तो हमसे भी कितने दिन पहले, बहुत पहले, और भी 6-7-8 वर्ष पहले से, 1930 में आए प्रभुपाद का जब प्रचार आरंभ हुआ तब से पढ़ते थे स्कूल में, तो उस समय से हमने देखा जब पढ़ते नहीं थे कभी, किंतु उनके समस्त पुस्तकों में लाल और इम्पोर्टेंट दाग लगे हुए उनके सब ग्रंथ यहाँ पर, उन्होंने सब ग्रंथ हमको यहाँ पर दिया उसमें सब। तो उसमें एक मान लेगा जैसे प्रभुपाद जी की आरती लिखा, हम लोग की मंगला आरती उन्होंने लिखा मंगल जो सवेरे सवेरे पर, इसको यदि कोई अपने संप्रदाय के तथ्यों को जानने वाला कोई अभिज्ञ व्यक्ति हो तो देखेगा जो गोविंद लीलामृत भक्ति स्वामी सिंधु इत्यादि उज्ज्वल नीलमणि समस्त पुस्तकें उसमें, जैसे पहले पहले है मंगल श्री गुरु गौरव मंगल आरती
मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल
जुगल
मंगल निशांत लीला मंगल
देखो मंगल निशांत लीला यहीं से आरंभ किया, मंगल निशांत लीला
मंगल उदय
माने क्या, मंगल निशांत लीला ये जो आरती हो रही है मंगल की मंगल आरती, वो आरती क्या हो रही है निशांत लीला यही है उनकी आरती, वह उदित हो हमारे हृदय में, पक्षी सब कलरव कर रहे हैं, वृंदा जी ने उनको आदेश दिया है और सुख और सारी द्वंद कर रही हैं और कृष्ण को और राधा जी को जगा रही हैं, और उस समय में कूजन कर रही हैं पक्षी, पक्षियों के कूजन में उस कूजन में भी कुछ बहुत गंभीर भाव है, बहुत गंभीर भाव। मंगल आरती जैसे मान लिया कि एक छोटा सा इंस्टांस उदाहरण दे, सवेरे राधा कृष्ण उठ गए, कृष्ण जी राधा जी का उसी समय में श्रृंगार कर रहे हैं, थोड़ी देर में सखियां हैं, राधा जी ने कहा आप लोग हमारी प्राण प्रिया सखियां हैं, बहुत हमारी प्यारी है, सब समय हमारे लिए आप लोग प्राण देती हैं, अब इस समय फिर आई है हमें कुछ सुख देने के लिए, ऐसे भाव से कहा मानो वो कुछ शिकायत कर रही हैं इनसे, जैसे मैं कहूं आप परम उदार वैष्णव हाँ मेरे ऊपर तो आपकी कृपा बरस रही है, मैंने सब समय वो मान ले कि उनकी निंदा इत्यादि करते हैं, आपकी कृपा आप नहीं होते ना तो हमारा भजन साधन नहीं हो, मैं अपनी गलती को नहीं समझ सकता कि मैं क्या क्या गलतियां और दोष करता हूं, ये आपकी बड़ी भारी कृपा है, माने क्या आप मेरी जो निंदा करते हैं अच्छी बात है ठीक, किंतु ऐसा नहीं होना, ये उसका अनुभव था। थोड़ी देर के बाद में सखी ने देखा जिसे ये क्या करें इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर मैं कहती हूँ हमने अपना सर्वस्व तुम लोगों के प्रति सौंप दिया, अपने लिए कुछ नहीं रख, और तुम हमें बहकाश करके तुम्हारी बातों में आ गई और यहां तुम लोग लाए, वो तो भगवान ने आज मेरी रक्षा की, आज यदि प्रभु हमारे ऊपर में कृपालु नहीं होते तो हमारा पार्थिव धर्म ही नहीं बचता, कहां एक महा
लंपट
के हाथों में हमको दे दिया। फिर कहती है और वह सुन गई दे दिया, किंतु अधिक परिश्रम गोचार में परिश्रम होता है ना, बहुत परिश्रम, और जगने के वजह से आज जो ही हमारे पास में तो ही सो गया और अभी तक ये सो रहे हैं। ललिता जी कहते हैं ये ठीक कहती है, अरे ये तुम तो पतिव्रता हो और कृष्ण क्या है परम ब्रह्मचारी हैं, इनके यहां तक कि वेदों में सर्वत्र इनको ब्रह्मचारी कहा गया है, इनको परम ब्रह्म कहा गया है, इसलिए परम ब्रह्मचारी ये हैं, ये तो विख्यात ब्रह्मचारी आत्म यथार्थ में पतिव्रता है, किंतु एक बात ऐसे ये ब्रह्मचारी हैं कि कि निद्रा जो शब्द है ना स्त्रीलिंग है, निद्रा को भी स्पर्श नहीं करते मनुष्यों की, तो बात क्या माने क्या। कृष्ण वहां पर सो रहे थे, सुन करके सो रहे, बंद करके सो रहे थे। अर्थात जब निद्रा ही नहीं है, विशाखा जी ने कहा ये तो प्रयाग में जाकर अपने धर्म की वृद्धि के लिए ब्रह्मचर्य और पातिव्रत दोनों को यज्ञ करके उसमें हवन कर दिया। मतलब क्या, ये सब गोविंद लीलामृत की बात है, इसमें कूट कूट करके भरी गई, कौन समझेगा इसको। हमसे पूछे ये कैसा हुआ है, मैं बेवकूफ नंबर एक, उस समय इन सब चीजों को जानता नहीं। कहा जब बहुत सुंदर हुआ, किंतु मैं समझता तो कुछ था नहीं, विशेष करके ये बंगला में था मैं समझता नहीं। मैंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ, ऐसे कह दिया, किंतु थोड़ा सा लंबा हो गया है। मैं उस समय नहीं समझा कि इसमें ये एक एक शब्द, एक एक लाइन का कितना गंभीर अर्थ है, जो गोविंद लीलामृत और भक्ति रसामृत सुंध इत्यादि कृष्ण भावनामित सा, ये सब उसी के अंदर में समाविष्ट है। एक गागर में सागर भरा हुआ, उस समय नहीं समझता। अब अफसोस होता जी क्यों ऐसा उत्तर दिया, समझ लिया मुझे मूर्ख है, कुछ नहीं समझता, कभी भूल की बात नहीं। इतना सुंदर लिखते थे, जो सोचने के लिए समय नहीं, क्या वक्तृता देंगे कभी पहले से विचार नहीं किया, सभा में पहुंचा वक्तृता देना आरंभ किया, लिखना आरंभ किया, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, एकदम लिखते चले, बहुत सुंदर युक्तियां शास्त्र का प्रमाण इत्यादि, श्लोक नहीं लिखते थे, उसका एक दो अक्षर लिख दिया बस। यहां तक कि और जितने साहित्य थे हमारे सुंदरानंद विद्या विनोद, उसमें बहुत राइटर थे, अनंत वासुदेव कहते थे जैसे उससे सीखो लिखना और भाव की अभिव्यक्ति। उन्होंने हमारे गौड़ीय पत्रिका में पहले मांगल्य एक प्रबंध लिखा, पहले गौड़ीय पत्रिका जिस वर्ष में चालू, हमारे आने के बाद में चालू, उसी वर्ष चालू हुई,
विरह मांगल्य,
विरह मांगल्य, इतना सुंदर लिखा है जो मैं तो बार बार पढ़ करके बार बार एकदम ही हो जाता, मैंने अनुवाद भी मैंने किया है। तो उसमें विरह मांगल्य में लिखा है, जब कोई किसी के अंदर में कोई भावना आ जाती है, विशेष करके विरह की भावना जब आती है, तो हृदय में उथल पुथल मच जाती है और तरंगे आती हैं। अब तरंगे हृदय में नहीं आबद्ध होकर के जो निकल जाते हैं भाव, उसी को कहते हैं भाषा साहित्य, हृदय के भाव, उच्छ्वसित भाव। आज मेरी लेखनी कंपित कंपित होकर के धीरे धीरे चल रही है, कभी अटक जाती है, वो नरहरि प्रभु का और प्रभुपाद जी का उसमें विरह मांगल्य में लिखा है, इतना सुंदर लिखा है। एक उसमें भाव लिखा है गोलोक बैकुंठ धाम के, कोई एक महापुरुष अथवा कोई एक मंजरी, नैन मंजरी थी उनका नाम, वो मंजरी इस जगत में आकर के, जड़ जगत में आकर और प्रभुपाद हुए, भक्ति सिद्धांत
सरस्वती
ये उपाधि है ना, तो जड़ जगत के लिए उपाधि है, और ये उपाधि धारण करते हैं अपना प्रभाव दिखलाने के लिए, ये प्रभाव एक करण वैभव। उन्होंने कहा जी दीनहीन होकर के उस पदवी को छोड़ करके मंजरी का इस जगत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहलाना या मैं सन्यासी हूं कहलाना, यद्यपि दीनता नहीं है किंतु ये चरम दीनता है। यदि कृष्ण परम ब्रह्मत्व को छोड़ करके, स्वयं भगवत्ता को छोड़ करके गोचारक बनते हैं, तो गोचाराना वैकुंठवासियों के लिए क्या है, ये निंदा का विषय, किंतु वही परसिक भक्तों के लिए उत्तम कारण है। इसलिए इस जगत में आकर के प्रभुपाद जो कला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये उनकी बड़ी दीनता है। इतना ऊंचा पद छोड़ करके अब ये जगत में एक सन्यासी हो रहे हैं, बड़ा प्रभावशाली, ये तो उनके लिए बहुत दीनता और हीनता दिख रहा है। शायद आप लोग समझे होंगे कि नहीं मेरे भाव, कहां मंजरी भाव, कहां उतना उन्नत भाव लोक का, और उसको भूल करके, भुला करके और जगत में अपना परिचय देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ये दीनता से बढ़ करके क्या हो सकता है, बहुत बड़ी भारी दीनता। ये अपने इससे बड़े कठोर थे स्वभाव से, बड़े गंभीर, किंतु यदि कोई इनका हो जाता ना तो वो सब प्रकार से उसकी रक्षा करते। बड़े भक्त वत्सल थे, कोई भी थोड़ा सा इनका कोई शिष्य अपना थोड़ा सा कोई दुखी हो जाता तो उसकी जब तक आकांक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक उसकी देखभाल करते और उसको वो देते। हम लोग समझते हैं कि उनकी हम लोगों पर बहुत प्रचुर कृपा थी, कितने लोग आए और कितने लोग गए, हम लोग को कैसा आकर्षण करके अपने चरणों में उन्होंने रखा। हमारे लिए तो उन्होंने बहुत बड़ी भारी कृपा, यदि उनकी कृपा नहीं होती तो मैं दूसरी जगह होता, मधुसूदन महाराज जी के पास में होता, छल से कल से बल से हमको अपने पास में रखा, क्योंकि हमको घर से वही लाए
मधुसूदन
महाराज। मैं इनके प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखता था, अभी भी है। तो उस समय यदि गुरु महाराज जी छल बल नहीं करते, उन्होंने क्या किया, मधुसूदन महाराज जी का स्वभाव जानते थे। मधुसूदन महाराज जी से उन्होंने कह दिया, ये गौर नारायण कहता है कि हम आपके साथ में रहेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं और किसी का भाषण हमको अच्छा नहीं लगता, मधुसूदन महाराज का भी उतना अच्छा नहीं लगता। बस इतने सुनकर के मधुसूदन महाराज चिढ़ गए, हमसे बात ही नहीं किया, हम उनसे बात करने जाए तो वो बात न करें, ये पॉलिसी है राजनीतिक में, ऐसा ही होता है, किसी से लड़ाना हो तो भेद डाल दो, तो ये भेद डालने
का,
तो बस वो बिगड़ गए हमारे प्रति और हमको जाने के समय में ले नहीं गए, तो हम भी उनके साथ में शायद चले गए हो। इसी तरह से इतने भक्त वात्सल्य था उनका कि एक आसामी लड़का था, उसका नाम अनंग मोहन था, बहुत ही सुंदर लड़का, अलबेला लड़का, कीर्तन करने में, मृदंग बजाने में, सब विषय में, रसोई में, सब विषय में उसको बाई चांस हो गया टीवी। अपने आप उसकी टट्टी फेंकना और उसके लिए प्रचुर रुपया खर्चा करके उसकी चिकित्सा लेती है, उनका जो शिष्य का वशीभूत हो गया, सब उनके गुरु भाई कहने लगे, उनकी इच्छा थे जो छोड़ दे। उन्होंने कहा कि इसको शरण में लिया है, मैं इसे कभी भी जगत, यदि ब्रह्मांड सब एक तरफ में हो जाएगा तो इसको असहाय में नहीं छोड़ सकता, ऐसा होना भी बड़ा भारी कठिन। उसके लिए गुरु भाई लोग सब छोड़ करके चले गए, उन्होंने कहा जब हमारे शरण में आया है तो हम इसको सब प्रकार से पोषण, अंत तक उसका परिपोषण, हमारे ऊपर में प्रसन्न होने का यही कारण एक था, हमने जीवन का सब छोड़ छाड़ करके मोह माया ममता उसी बच्चे की मैंने सेवा की, और वो अंत में वो कैसे गया, राधा कृष्ण मुझे वृंदावन में बुला रहे हैं, हरे कृष्ण है? हमारे बाबा माने पिता, गुरु जी को बाबा के रूप में समझता, उसका फोटो उसके हृदय यहाँ पर रख दिया और हा राधे हा कृष्ण वृंदावन में बुला रहे। यदि कोई एक आदमी भगवान का अजामिल ने नारायण नाम किया, वो भी अपने पुत्र के लिए किया, तो उसकी सदगति वैकुंठ में हुई होगी, और जो ये बच्चा कह रहा है राधे कृष्ण राधे राधा जी और कृष्ण हमको वृंदावन में बुला रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ, गौर नित्यानंद का आधा घंटा एक घंटे तक का, मैंने हाथ जोड़ दिया, जी प्रभु आप कृपा करके जहां जा रहे हैं हमको भी वहीं पर ले जाए। उस समय उसको बड़े बड़े डॉक्टर लोग सब आ रहे, देखिए नाड़ी काड़ी तो कुछ नहीं और कैसी ये जीव, सब लोग आश्चर्य कर। वही मैंने पत्र लिखा गुरु जी को उस समय अंतिम वर्णन, ये कैसे कैसे ये कृष्ण कह रहा था कैसे कैसे, गुरु जी उस पत्र को लेकर के रोते थे बहुत दिनों तक, इसलिए गुरु जी का स्नेह हम लोगों के ऊपर है। जैसे हम लोग भी अपने प्राणों को कुछ न समझ करके इन तुच्छ सेवाओं में भी अपने को आत्महूति दे देना, बस गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, अपना सर्वस्व दे देंगे। और ऐसे लाख करो, उनका सर्वस्व क्या है? प्रेमा भक्ति। गुरु जी के पास आकर के संसारिक वैभव इत्यादि की आकांक्षा ना करो, बस एक उद्देश्य, गुरु जी के प्रति ऐसी निष्ठा, राधा कृष्ण का प्रेम कैसे लाभ हो, बस यही। इसी तरह से उनकी गुरु निष्ठा तो सब विश्व में प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है। उनके समान किसी के भी अंदर में हमने आज तक गुरु निष्ठा नहीं देखी। शास्त्रों में इधर उधर सुना है, किंतु प्रत्यक्ष मैंने देखा है। प्रभुपाद की समाधि में जाकर के प्रभुपाद जी का नाम नहीं ले, प्रभुपाद नहीं कह पाते, विकल होकर के एकदम रोने लगते थे। कहते जो शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, ये सब आए, बड़े बड़े शिष्य, उनका संग देकर के प्रचार करवाए, जो हजार वर्षों में कराया, ये प्रभुपाद जी हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और थोड़े से वर्षों में विश्व में, यहाँ तक कि अमेरिका इत्यादि सब विश्वों में प्रचार किया, ऐसा आज तक नहीं किया। उनके कोई भी बड़े शिष्य लखपति करोड़पति नहीं है, सब ऐसे ही मध्यम अधिकार, मध्यम मध्यवित्त के लोग, उनको लेकर के और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज विश्व में सर्वत्र कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का उन्होंने, ये सब उनका वैशिष्ट्य कहते हैं। कितना हो गया
साहब,
आज यहीं तक रहे, कल ब्रह्मचारी लोग प्रस्तुत होकर के आएंगे गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र के संबंध में, आप लोग सब बोलेंगे एक एक। अभी बहुत बोलना, कोई भी अंग पूरा नहीं हुआ, जहाँ तक होगा कल ये सब लोग बोलेंगे। और भी गोस्वामी जी का आदिभाव तिथि, ये तीन दिन हमारे यहाँ गुरु महाराज जी पहले से ये करते
थे,
तो हम लोग तो गुरु जी का यहाँ पर हम लोगों ने मनाया, और हम लोग
परसों
प्रभुपाद जी की का आविर्भाव तिथि हम लोग वृंदावन में मनाएंगे। तो परसों हम लोग सवेरे, रविवार के दिन पड़ेगा, रविवार को हम लोग सवेरे वहाँ जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे। आप लोग सब लोग चलें वहाँ पर, कुछ गुरु प्रभुपाद जी की का जीवन, अपरापित जीवन चरित्र के संबंध में हम लोग वहाँ पर कुछ बोलेंगे, और सभी लोग प्रसाद इत्यादि लेंगे, महोत्सव हम लोग करेंगे। तो जो जो जा सकते हैं वहाँ पर चलेंगे, दूसरे मठों में भी हम ब्रह्मचारी सन्यासियों से कहेंगे, आप लोग भी सब चलें। जय नित्य निराज्ञान तदी आविर्भाव तिथि की जय। जैनित कलीला पुरुषम विष्णुपाद सुत सस्म भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौ प्रमानंदे मठ के अंदर में, गोड़िया मठ में बहुत गिरले लोग हैं, तब ये सुन करके तब सब लोगों की फिर सुनने श्रद्धा हो गई। ठीक ही है, किंतु भाव ठीक रख करके इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़े। जैसे इसने बतलाया कि भिक्षा करके लोग आते थे, उनसे मांग लेते थे, तो इसको उस रूप में समझ करके ऐसे समझने की चेष्टा करें, थोड़ा सा सुधार के साथ। हमारे पूज्यपाद नरसिंह महाराज जी थे, गुरु महाराज जी के भाई थे,
चाचा
गुरु महाराज के, तुम लोग सब अपने में लेते हो, हम भी तुम लोग के गुरु भाई ही हैं। मैंने ठीक ठीक
ना भाई बोलते ना गुरु
भाई, हाँ एक ही बात। हमारे साथ में नरसिंह महाराज जी हमको लेकर के भिक्षा जाते थे, फिर विक्रम महाराज जी को पहले ले जाते थे, इसके बाद में हमको लेकर के जाते थे। वो बहुत ही दृढ़ व्यक्ति थे और बिना लाग लपेट की जो खड़ी बात है उसी को कहते थे, किसी की मुखा देखी नहीं करते थे, मुख पर एक तरफ से और पीछे से एक तरफ से। तो हम लोग गए भिक्षा मान लिया कि जैसे उस समय में 400-500 रुपया करना भिक्षा बड़ा कठिन था, बहुत कठिन, और उसमें दो दो रुपया सब एक एक रुपया बेसी से बेसी दो पांच दिया बहुत हो गया, समझा जाए राज्य मिल गया। तो हम लोग श्रीरामपुर के अंचल से 500 रुपया भिक्षा किया, उसमें से कुछ खर्चा हुआ और उसमें से 20-25 रुपये कम हमको बोले जिसे तुम गुरु जी को अपने दे आओ। तो मैंने लिया ले करके और गुरु जी के यहाँ मैं देने गया। गुरु जी ने पूछा जी कितना भिक्षा हुआ और कितना खर्च हुआ। वो किसी से मांगते नहीं थे जो भिक्षा दिया, जो भिक्षा लेकर के आते थे उनकी तो अपनी श्रद्धा थी, ऐसी श्रद्धा थी जैसे 4.5 रुपया यदि भिक्षा हुई तो 12 आना जहां से ले आकर के उसको पूरा करके पूरा 5 रुपया 4.5 रुपया हुआ तो उसको 12 रुपया खाते थे। सभी लोगों की ऐसी थी, सभी लोग गुरु को प्रसन्न करने के लिए आते, इसलिए भिक्षा का पैसा कभी किसी से मांगते नहीं थे, ये समझ लो। अब बड़े उदार थे, कभी किसी से कोई, हम यहाँ पर मथुरा में थे इतना दिन, कभी हमसे कोई अकाउंट नहीं हमसे पूछा कितना जमा हुआ कितना खर्च हुआ कैसे चल रहा, बस ये देखते जैसे ये यहाँ पर मस्त कैसा चलता है, बड़ी चिंता करते थे जी इसको मैं कुछ देता नहीं हूँ। और हम लोग का था यदि हो गया तो था, कोई हिसाब किताब कभी गुरु जी को नहीं दिया अपने जीवन में, किंतु हिसाब सब ठीक रखता। तो वो पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा जैसे 500 रुपया भिक्षा हुआ तो उन्होंने 4.5 रुपया ये कैसे दिया फिर खर्चा काट करके। तो मैंने कहा जैसे शायद वो रख लिए हम, अच्छा उनको बुला लो। तो बुला करके उनसे पूछा जी कितना भिक्षा हुआ, उन्होंने कहा 500 रुपया। तो और रुपये कहाँ हैं, अच्छा हम देते हैं, बस बिगड़ करके भीतर भीतर में गुम गुम करते हुए चले गए और बाकी रुपया ले, ये रुपया। गुरु जी ने बिना किसी बंद के बिना कुछ बोले हुए सो करके अधिकांश में पैर पर पैर रख करके बड़े गंभीर रूप से रख उन्होंने वो पैसे लिए, लेकर के उसको गिन लिया, गिन करके नोट को कोना जो है उसका सीधा कर दिया और कोना करके फिर गए ये भी तो लिया। क्यों जो दे रहे हैं फिर से
दिया, ये चलो नीलम का
बंगाल में कहा। तो उनका इसलिए लिया कि इसमें 20 था ना, वो 20 को मैंने ले लिया और आपको अपवित्र करके, जैसे यज्ञ का अवशिष्ट चीज होता है पवित्र, ये चीज आपको पवित्र करके दे रहा हूं। तब वो विचार उन्होंने कहा विषय लोगों का भी इस भिक्षा में रहता है, उस भिक्षा का यदि कोई एक दाना भी ले लिया जैसे आजकल हम लोग ले लेते हैं, इसीलिए हम लोग मरते हैं, इसलिए भजन नहीं होता, निर्घात रूप में ये समझो। उन्होंने कहा इसमें 20 लगा हुआ है, आप 20 को नहीं भजन कर सकते, आप नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने ले लिया, अब इसको मैंने पवित्र कर दिया, अब ले जाइए, और भी रुपये की जरूरत है और ले जाइए। बस उनके आंखों से आंसू टपकने लगे और फिर उनसे आने लगे। बड़े गंभीर आदमी
दूसरी बात, वो जो चिड़िया से पक्षी की बात कहा, उसमें इसने कहा तो ठीक है, किंतु उसमें दूसरी शिक्षा प्रबल है, भगवान के प्रति भरोसा। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, उसमें ये शिक्षा उसने बतलाया। वो भी ठीक है, जो गुरु भाइयों का आदर करने के लिए चिड़िया ने जो पैसा भेज दिया था, वो गुरु भाइयों की सेवा में उनको लगा दिया, ठीक। किंतु वहां पर और भी ये शिक्षा है, गुरु महाराज जी बिना पैसे के कोई लिए हुए सब गुरु भाइयों को और वैष्णवों को लेकर के बाग बाजार में, अभी जो मठ है उसके पास ही में बोस पड़ा लेन में, गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की। उनके पास में एक पैसा भी नहीं था। एकादशी का दिन उनके एक गुरु भाई झट वहां पर आ गए, और भी लोग थे उनके पास में, कम से कम तो उस समय में 40-50 सन्यासी ब्रह्मचारी इत्यादि थे, किंतु उस दिन एक पैसा भी नहीं। उन्होंने कहा जैसे निर्जला उपवास बहुत अच्छा है, निर्जला उपवास करना चाहिए, जैसा देश तैसा देश। कभी कभी हम लोगों के समय में भी ऐसे ही निर्जला उपवास होता था, कुछ नहीं है तो आज निर्जला उपवास। तो उन्होंने कहा आज निर्जला उपवास करना ही ठीक है, अपने आदमियों को तो समझा दिया ब्रह्मचारियों का, किंतु एक ब्रह्मचारी आए बहुत पुराने और खाने के बड़े शौकीन, अच्छे अच्छे मिठाइयां या अच्छी अच्छी चीज डालना इत्यादि खाते थे, इचोड़ का डालना एकदम घी में भरा हुआ, मसाला उसमें परिपूर्ण, बड़े और बड़े योग्य अच्छे आदमी। तो वो आ गए हैं एकादशी के दिन, उन्होंने सोचा चलो हम तो निर्जला उपवास कर रहे थे, इसके लिए अब निर्जला कैसे होगा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, सोच रहे थे, किंतु एक पैसा उस दिन नहीं। ऐसे पैर पर पैर रख करके ऐसे हिला रहे थे और कुछ चिंतन करने लगे। इतने में ऊपर से एक गौरैया पक्षी, वो जो छोटी छोटी होती है ना, क्या कहते हैं चिड़िया, ये छोटी
चिड़िया
एकदम ऊपर से एक पोटली थी, झट नीचे गिरा दी, नीचे गया, खन खन बज उठा, जैसे चूड़िया बांध करके गिराया जाए ना, पैसा गिराया जाए, वो पैसा था बस नीचे खन खन करके ये गिर गया। तो एकदम उनके पास ही वो गिरा, उन्होंने उसको कौतूहल बस से उठा लिया, देखा जो उसमें 7 आने पैसे थे, 6 आने 7 आने पैसा था, केवल खुले पैसे थे। आज तो लाज लाज किसी प्रकार से बच गए। मैंने कह के जाओ बाजार से संदेश ले आओ, मिठाई ले आओ और ले आओ। उस समय 6 आने में काफी मिलता था, सब ले आए और उनको तो पेट भर खिला दिए। खाने के बाद ही वे जब वो चले गए, इतने में डाकिये ने पुकारा, केशव महाराज जी। दरवाजा खोल दिया गया तो वो आए, कहे 100 रुपये का मनी ऑर्डर आया है, गिरि महाराज जी वर्मा से भेजे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा भगवान कैसे, क्या एक पैसा भी नहीं था। अब वो 100 रुपये से उन्होंने प्रचार आरंभ कर दिया, वैष्णव को खिलाया पिलाया और प्रचार में निकले, और तब इनको कभी भी पैसे की कभी कोई कमी नहीं हुई, जो इच्छा करते थे वही हो जाए। ये भगवान के ऊपर में विश्वास ऐसा रखना चाहिए, यदि कोई सचमुच में भगवान के ऊपर ऐसा विश्वास रखता है, भगवान मुझे पालन पोषण करेंगे, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं, वो निश्चित रूप में भरण पोषण करते और अवश्य करेंगे। गुरु महाराज जी को जीवन भर ऐसे हाथ में पैसा नहीं किंतु कोई काम आरंभ किया हो वो। हम लोगों ने भी ऐसा देखा है गुरु महाराज जी को, तो हम लोगों को जैसे पैसे मिलते हैं ना, इतना मिलता तो मैं जाने क्या कर देते, विश्व को उथल पुथल कर देते। उनको एक साथ में 1,00,000 रुपया कभी नहीं मिला, 50,000 होगा कि नहीं, हम लोगों को तो 10-10 लाख रुपया ऐसे ही मिल जाता इच्छा है। और ऐसे खर्च करके जैसे तब ये गुरु जी की कृपा है। उस समय का उन्होंने थोड़े से पैसे से इतना विराट मठ नवद्वीप में किया है, मथुरा में किया है और सब जगहों में किया है, और इतने लोगों को आकर्षित किया। यदि बीज नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं, बीज का प्रबल बीज होगा ना तो उसका ऐसा ही प्रभाव होता है। और भी गुरु उसने सब बतलाए बड़े अच्छे अच्छे, तो ये भगवान पर और गुरु पर ऐसा भरोसा ना चाहिए। उनके गुरुजी ने उनको 4 बार संन्यास लेने के लिए स्वप्न दिया। मायापुर में एक बार संन्यास दिया जा रहा था, सब ठीक ठाक हो गया, तो भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी उसमें सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि अरे इसको यदि संन्यास दे दिया तो मठ कोई चलेगा नहीं, तो व्यवस्था कौन करेगा, इसको मत दीजिए। उसमें गुरु जी बहुत छोटे थे और उनकी उम्र काफी थी भक्ति विलास तीर्थ महाराज, किंतु इनकी विलक्षणता से बड़े प्रभावित थे, इसलिए कहा जी इसको संन्यास मत दीजिए, नहीं तो ये सब छोड़ करके प्रचार में चला जाएगा, मायापुर के और मठों की देखभाल होगी नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने छोड़, फिर एक बार और देने के लिए संकल्प किया तो फिर उन्होंने नहीं माना। फिर इसके बाद में स्वप्न में दिया